हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 24। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यहां इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना मृत विषयक विविध कर्म होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्धजीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने भी अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो उसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इस श्लोक में भगवान यज्ञ की विधि का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें कर्ता, जो करने वाला है यज्ञ को, जो उसमें सामग्री दी जा रही है वो, यज्ञ की प्रक्रिया और यज्ञ का फल, सभी कुछ आध्यात्मिक होता है। प्रभुपाद जी ने यहां पे एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवतम से दिया है, दूध और दही का। यहां उन्हें बताया कि भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि भगवान भगवद्गीता में आगे भी बताते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसा कोई समय नहीं है कि जीवात्मा कोई कार्य करना, कर्म करना बंद कर दे। लेकिन अगर वो कर्म भगवान को से संबंधित है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो ऐसा कर्म हमको मुक्त करता जाता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि दूध अधिक पीने से व्यक्ति को दस्त इत्यादि हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, लेकिन वही दूध से बनी हुई वस्तु जिसको आप दही कहते हैं, दही चावल इत्यादि खा करके व्यक्ति ठीक हो जाता है। इस बात को नारद मुनि बोलते हैं ब्रह्म कर्मणि भावितम, यदीश्वरे भगवती ब्रह्म कर्मणि भावितम। यहाँ पे ब्रह्म कर्म समाधि ना आ रहा है, भागवतम में आ रहा है ब्रह्म कर्मणि भावितम, ब्रह्म कर्म। यहाँ पे भी ब्रह्म कर्म शब्द ब्रह्म कर्म आ रहा है। ब्रह्म कर्म का अर्थ है भौतिक भोग की इच्छा से रहित कर्म, वो कर्म जो कृष्ण को समर्पित हैं, वो ब्रह्म कर्म कहलाते हैं। और हम अपने कर्म मन से, वाणी से और शरीर से करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से समझता है, अपने संबंध को समझता है कि वह भगवान का नित्य दास है, इसलिए ऐसे कर्मों में प्रवृत्त रहता होता है जिसके द्वारा कृष्ण की सेवा हो, और ऐसे कर्मों को करते हुए उसके मन में ये भाव रहता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, और इस भावना से युक्त होकर कर किए जाने वाले कर्म व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि वो कर्म कृष्ण भावना भावित होते हैं। अब कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है, अरे दूध से पेट खराब हुआ तो दही से कैसे ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हर वस्तु का प्रभाव होता है। जो कर्म इस जगत में हमको बांधते हैं खाने के, पीने के इत्यादि, वही कर्म अगर भगवान संबंधित हो तो फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कहीं जा रहा है, जो जिस बिजनेस से उसकी खुद की इंद्रिय तृप्ति होती है, तो रास्ते में आने वाले जो चींटे मर जाते हैं उसका उत्तरदायी उस व्यक्ति को होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में जा रहा है और रास्ते में कुछ हत्या हो जाती है तो उसका उत्तरदायी उसको नहीं रहना पड़ता, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सबको मारते बैठे हैं, लेकिन अनजाने में जो भी पाप हो जाता है अगर भगवान की सेवा में हो रहा है तो उसका कोई रिएक्शन, उसका कोई कह सकते हैं कोई प्रतिफल उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। इवन खाना बनाते समय भी कितनी हत्या हो जाती है, लेकिन अगर वो भगवान के लिए भोग बन रहा है जो भगवान को समर्पित होगा तो उसके पाप फल से व्यक्ति बच जाता है। दूसरा फायदा ये भी है कि जब हम भौतिक कर्म करते हैं तो उसका उसकी वजह से हृदय में अज्ञान या अविद्या बढ़ जाती है, जबकि इसके विपरीत हम अगर कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो हमारे हृदय का जो अज्ञान है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इस संबंध में एक बहुत सुंदर उदाहरण भक्त लोग दिया करते हैं कि जब नदी व्यक्ति को पार करनी होती है तो नदी के बहाव के संग भी बहना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसका उद्देश्य नदी को पार करना है, ना कि नदी के से बहाव के संग बहना। तो उसी प्रकार से ये मानव जीवन जो है वो एक पुल के समान है जिसमें हमें अपने घर नहीं बांधने, बल्कि इसके द्वारा भगवत धाम की ओर जाने का प्रयास करना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का प्रयास करना है। तो उसका तरीका भगवान यहाँ बता रहे सिद्धांत में, और सिद्धांत ये है कि अपने कर्मों को ब्रह्म कर्म में परिवर्तित करना है। इसी बात को भगवान सातवें अध्याय में बोलेंगे, आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो योगी जन है वो सारे उनके सारे कर्म आध्यात्मिक होते हैं, भगवत संबंधी होते हैं। दूसरा बात यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, विधि यह विधि यज्ञ या विष्णु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिकता में ग्रस्त जो जीवात्मा है, जो भोग में लगा हुआ है, उसका मेन मुख्य जो बीमारी हुई है कि कृष्ण से अलग रह करके सुख प्राप्ति का विचार करना, सुख प्राप्ति की इच्छा, ये जीवात्मा का स्वरूपगत स्थिति है। तो उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान से अलग होकर करना ये बहुत बड़ा बीमारी है, और इस बीमारी के उपचार के लिए यज्ञ की विधि बताई गई है। कर्तव्य भावना से हम अपने कार्यों को कृष्ण को समर्पित करना सीखें, विधि बताई जा रही है। भगवान को भोग लगाना है, भले ही प्रारंभ में प्रेम नहीं हो, लेकिन इस समझते हुए नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा कर्तव्य है, इस कारण से भोग लगा करके ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक और अच्छी बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, सब लोग भगवान से प्रेम करें, भगवान से श्रद्धा से उनकी सेवा करें, तो पूरे जगत का वातावरण जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाएगा, ईर्ष्या रहित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस जगत में हर व्यक्ति अपने को केंद्र मान रहा है, वो चाहता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति हो, और जब इस तरह से अलग अलग केंद्र बन जाते हैं, और जब हम मेरी इंद्रिय तृप्ति में की वजह से किसी दूसरे की इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो हम अपने को दुश्मन मानने लगते हैं। अगर मेरी इंद्रिय तृप्ति में दूसरे की इंद्रिय तृप्ति का से हो रही हो, या मेरी इंद्रिय तृप्ति में वो मेरा सहायक बने, तो मैं उसको दोस्त मानता हूँ। और आप देख सकते हैं भौतिक जगत में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, प्रायः जब तक उनकी इंद्रिय तृप्ति हमारे द्वारा प्राप्त होती है तभी तक वो हमसे दोस्ती रखते हैं, अन्यथा वो हमारी दोस्ती नहीं रखते। केवल भक्तों के समाज में ही हम ऐसा देखते हैं, या जब कोई व्यक्ति भक्त बनने लग का प्रयास करता है तब उसके हृदय में आती है कि क्यों ना मैं भक्ति का लाभ दूसरों को भी दूं, दूसरों को भी लाभ उठाऊं। नहीं तो ये सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अगर इंद्र तृप्ति चाहता है, भोग चाहता है, तो वो किसी न किसी को दुख देगा ही। और ये अद्भुत बात है कि जगत में सभी भौतिक जीवात्माएं भोग चाहती हैं। तो इस प्रवृत्ति से शुद्ध करने के लिए यज्ञ की विधि बताई गई है कि तुम्हें भोग करना है, पहले ये सीखो कि कृष्ण ही भोगता है, भगवान को अर्पित करो। मान लीजिए जैसे खाना है, तो खुद खाने की बजाय पहले भगवान को अर्पित करो, फिर भगवान उसको जब ग्रहण कर लेते हैं और फिर उस प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, ये समझना चाहिए। तीसरे सेक्शन में प्रभुपाद जी यह बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से गोलोक वृंदावन में भगवान रहते हैं, उनके दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज को ब्रह्म कहा जाता है। तो जो भौतिक जगत है, आप उसको उसकी कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए बहुत बड़ा आकाश है, ज्योतिर्मय आकाश है, उसमें एक कोने में कहीं बादल है, तो उस बादल के अंदर प्रकाश नहीं जा पा रहा है। बादल के बाहर सब तरफ प्रकाश है, लेकिन बादल के अंदर प्रकाश नहीं जा रहा है। इसी प्रकार से भौतिक जगत जो है एक बादल के समान है, और इसके सब तरफ आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति है, लेकिन इस भौतिक जगत में ही माया के द्वारा ये ब्रह्म ज्योति आवृत रहती। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। इस जगत में कोई भी वस्तु है, वो वस्तुतः आध्यात्मिक है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, लेकिन जब मेरी दृष्टि भोग की होती है, तो वो मेरे लिए भौतिक रूप से कार्य करती है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। कोई भी वस्तु इस जगत में भगवान की ही शक्ति है। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः, इस जगत में सब कुछ, या ईशाभाष्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत्, इस जगत में कोई भी वस्तु है वो सब कुछ भगवान की है, और भगवान पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो भले ही वस्तु में चेतन ना हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, या भगवद गीता में भी लिखा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि दरवाजे, हमारा जो दरवाजा है एक व्यक्ति है, लेकिन वो जो दरवाजा है वो भगवान की शक्ति है। तो दरवाजा, टेबल, मोबाइल, कुछ भी हम वस्तु देख रहे हैं, वो सब भगवान की शक्ति से उद्भूत है। लेकिन जब मैं उसको भोग की दृष्टि से देखता हूँ, तब वो भौतिक रूप से कार्य करता है और मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में और फंसा देता है। लेकिन अगर मेरी भोग की बुद्धि ना हो, मैं इसको समझूं, मैं ये भावना रखूं कि ये वस्तुएं तो मेरी है, भावना की बात नहीं है, हम इतना तो समझ सकते हैं कि वस्तु हमारी है नहीं, हम इस जगत में हैं, लेकिन जगत की वस्तुओं को हमने नहीं बनाया है, तो ये तो बुद्धिमानी से हम समझ सकते हैं। तो ये वस्तुएं भगवान की हैं, और अगर मैं उनका उपयोग भगवान के बारे में करने के लिए सोचता हूँ, तो वो तुरंत ही आध्यात्मिक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई गुलाब का फूल अपनी कोई गर्लफ्रेंड को देना चाहे, अपनी प्रेमिका को देना चाह रहा है, तो ये भोग बुद्धि है, और इसके द्वारा वो एक गुलाब को तोड़ता है तो उसका कर्म फल बनता है और उसको इस जगह से बनना पड़ेगा। लेकिन वही फूल जब वो देखता है कि कृष्ण को है, मैं इतना सुंदर फूल है, मैं इसे कृष्ण को दूंगा या उस कृष्ण के लिए माला बनाऊंगा, तो वो फूल तुरंत ही आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसे ही जो खाने के पदार्थ हैं, जब हम उसको सोचते हैं मैं इसमें कुछ खाना बनाऊंगा, भगवान को समर्पित करूंगा, तो तुरंत आध्यात्मिक हो जाते हैं। और इसके विपरीत, जब हम सोचते हैं नहीं ये तो खाने का माल है, मैं खुद खाऊंगा जम के, तो फिर ये वो भौतिक हो जाता है, और उसका प्रभाव भौतिक होता है, उसकी वजह से हमको अगले जन्म की तैयारी करनी पड़ती है, जगत में और बंध जाते हैं। तो आपने क्या सीखा? लास्ट सेक्शन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, अर्थात मन इस भावना से भावित रहता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण का सेवा करना, ये जगत भगवान का है, तो मैं भगवान के लिए इन चीज़ों का उपयोग करूँगा, तो इस जगत में व्यक्ति कितने समय तक भी रहे वो कर्मफल से मन्यता नहीं है, इसलिए इस पद्धति को सीखना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि इसमें हरिनाम और हरि कथा दोनों बहुत हमारे लिए मदद करती हैं। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा स्वाभाविक रूप से भोग की वासना कम हो जाती है, और भगवद गीता के द्वारा हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, बुद्धि के द्वारा निर्णय कर पाते हैं कि चीज़ों को मुझे कैसे करना है। तो इसके द्वारा हम लोग यज्ञमय जीवन जी लेते हैं, और सही में धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि यज्ञमय जीवन यानी हर क्रिया जो भगवान को समर्पित है, इस प्रकार का जीवन बहुत ही शांतिमय है, जिसको भगवान आगे पांचवें अध्याय में बताएंगे कि जो इस प्रकार का यज्ञमय जीवन जीता है वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और भगवद गीता में एक श्लोक भगवान बोलते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति शांत नहीं है, जिसके हृदय में भौतिक कामनाएं भरी हैं, वो व्यक्ति सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है।